ओम शांति। तो प्रातःकालीन दूसरा सत्र आरंभ करने जा रहे हैं और इस सत्र का विषय बहुत ही सुंदर है, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। समय की पुकार सुनकर जीवन में चलेंगे तो नफे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। समय की पुकार को नजरअंदाज कर दिया तो अपने लिए ही नुकसान अपने हाथ मोल लेंगे, और इसलिए वक्त की पुकार पर अपना अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। तो इस पूरे सृष्टि रंगमंच पर जो हम हीरो एक्टर पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस ड्रामा में इस समय वक्त की क्या पुकार है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका जीवन है। गीता का एक मुख्य श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न रखते कर्म करते चले जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अपनी स्थिति को सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय में समान रखो। ये गीता का मुख्य संदेश है। तो जैसा कहा आपका नाम भी गीता है, तो गीता का संदेश आपके जीवन में भी है। ऐसी आपने 1969 में 14 वर्ष की कोमल आयु में ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी छात्रा थी। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड प्रथम स्थान प्राप्त करने का आपने गौरव प्राप्त किया, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। और जब से आपने समर्पित जीवन आरंभ किया, आपकी ये यात्रा इस प्रकार से रही। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ोड़ा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। पश्चात लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की, और वहां से फिर 1993 में आप इस मुख्यालय के, ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आए। ज्ञान सरोवर, जो अकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, वहां आप बेस्ड रहे और वहां काफी सालों तक वर्ष सेवाएं करके वर्तमान में पिछले 6-7 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, एक कुशल राजयोग एवं सेल्फ मैनेजमेंट प्रशिक्षिका है, और बहुत ट्रैवलिंग करते हैं ताकि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जैसे नदियां बहते बहते सबका कल्याण करती है, तो हमारी बहने भी क्या है, ज्ञान नदियां हैं। तो ज्ञान नदियां बहते बहते सबका कल्याण करती है, तो देश विदेश में ट्रैवल करते हैं। बहुत ही अनुभवी शिक्षिका है। तो अभी हम सुनते हैं आपसे वक्त की क्या पुकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति का अर्थ तो पक्का हो गया ना? हाँ, दादी जी हर बार पक्का कराती है ना? दादी जानकी जी कहते हैं ना कि प्रथम ओम शांति माना,
मैं कौन, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारा रियल आइडेंटिटी है, जो हमारा वास्तविक परिचय है, उसको रियलाइज करना। क्या परिचय है हमारा? हाँ, बस इतना ही है। तो ये याद करो खुद के बारे में, जो हमारी क्वालिटीज हैं उसके आधार पर याद करो। रिलेशंस के आधार पर हमारी श्रेष्ठ आइडेंटिटी क्या है बताइए। हाँ, हमारा सबसे बड़ा परिचय है हम परमात्मा की संतान है। तो ये खुद को रियलाइज करना। और दूसरी ओम शांति माना, मेरा कौन, कौन है मेरा, कौन है मेरा बताइए। स्वयं परमात्मा मेरा है, स्वयं परमात्मा मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, साथी है, सारथी है ना, सब कुछ है। तो जिसका पिता ऑलमाइटी हो उनको तो कितना नशा रहेगा न? मेरा कौन, अपने आप में भी पावर आ जाती। और तीसरी ओम शांति माना, हमारा तीसरा पक्का नहीं किया, तीसरा पक्का करना है ना। जब खुद को समझ लेते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, तो तीसरी बात ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है। फिर कोई मूंझ नहीं रहेगी, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे क्या करना है। मेरे कर्म क्या होने चाहिए, बोल क्या होने चाहिए, विचार क्या होने चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाता है, पूछना भी नहीं पड़ेगा किससे। तो जितना स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को पहचानना महत्वपूर्ण है, उतना ही इस वर्ल्ड ड्रामा को समझना जरूरी है। सृष्टि खेल जिसको कहते हैं, सृष्टि का ये खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। वैसे हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है प्रकृति और पुरुष का खेल। अब तक हम ये समझ रहे थे कि ये स्त्री पुरुष का खेल है, नर और नारी से ये दुनिया चलती है, बढ़ती है। पर अब आपको स्पष्ट है, प्रथम लेसन आपने किया है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं ये समझना गलत है, मैं पुरुष हूं ये भी गलत है, क्योंकि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। तो देखो कितनी रॉन्ग कॉन्शियसनेस में हम रहते थे, है ना। सूक्ष्म में ये भान रहता है ना कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। पर अब आपने करेक्ट कर लिया होगा कि मैं आत्मा हूं। स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, दोनों प्रकृति के पांच तत्वों से ही बनता है। इसलिए प्रकृति माना क्या, पुरुष माना क्या? प्रकृति माना पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये पंच महाभूत हैं। हमारा शरीर और संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव पदार्थ, जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं, वो किससे बना है? पांच तत्व से बना है। इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं तो हम क्या कहते हैं? पांच तत्वों का बना शरीर पुनः पांच तत्व में विलीन हो गया। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति अनादि अविनाशी है, न इसकी उत्पत्ति है न अंत है। भल वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं, खगोल शास्त्री संशोधन करते रहते हैं, और हर कोई अपनी खोज के अंत में अंदाजे की ही बात करते हैं कि करीब इतने अरबों वर्ष पूर्व सूर्य निहारिका से अलग हुआ था होगा, अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई होंगी, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ठंडी हुई, फर्स्ट लेयर बना, सेकंड लेयर बना। पर वैज्ञानिक अपनी लंबी खोज के अंत में अंदाजे की बात बताते हैं कि करीब अबाउट ऐसा हुआ होगा। इसके बारे में फैक्ट आंसर परमात्मा आकर यही देते हैं कि प्रकृति के पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी है। इसलिए वे कहते हैं कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती है। और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा। गीता के अंदर ये बताया है कि ये शरीर जो है वो नौ द्वार वाली पुरी है। पुरी मीन्स नगरी। नौ द्वार वाली पुरी में रहने वाली आत्मा को पुरुष कहते हैं। आत्मा भी अनादि अविनाशी, इसलिए आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। ये तो आत्मा शरीर धारण करती है तो उसको हम जन्म कहते हैं, और आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे मृत्यु कहते हैं। पर आत्मा न जन्मती है न मरती है, आत्मा तो अविनाशी अजर अमर चैतन्य शक्ति है। इसलिए गीता में भी ये श्लोक है कि न जायते न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्मती है न मरती है, शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अनादि अविनाशी है। ये भी गीता का ही श्लोक है जो आत्मा की शाश्वतता के लिए गाया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, पवन सुखा नहीं सकती है। प्रकृति के पांच तत्वों से अलग आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो अब आप देखिए, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और चैतन्य शक्ति आत्मा का बना हुआ सृष्टि का ये खेल भी अनादि अविनाशी। कब शुरू हुआ कब पूरा होगा ये प्रश्न ही नहीं है, ये एक अनादि अविनाशी साइकिल है। आप सबका अनुभव होगा, बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, हमें याद है बच्चे आपस में पूछते थे एक दूसरे कि बताओ मुर्गी पहले या अंडा पहले, पूछते थे ना ऐसा, भाई फल पहले या बीज पहले। इट इज ए साइक्लिकल ऑर्डर। तो ये वर्ल्ड ड्रामा भी अनादि अविनाशी है जो चलता ही रहता है। अब हम ये समझेंगे कि इस वर्ल्ड ड्रामा में प्रकृति का रोल क्या है, हम चैतन्य शक्ति आत्माओं का रोल क्या है और परमात्मा का रोल क्या है। तो देखिए, संसार में तीन कार्य अविरत रूप से चलते ही रहते हैं, स्थापना पालना और विनाश। प्रकृति स्वयं भी स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है। देखो, जमीन पर बीज गिरते हैं, है ना, पेड़ पर फल उगते हैं, माना फल के अंदर वही बीज वापस बाहर निकलता है। वो पके हुए फल जमीन पर गिरते हैं, इंसान भी खाकर जहां तहां फेंकता है, पशु पंछी भी फल खाते हैं, उनके बीज फैलाते हैं, पवन के द्वारा पंछियों के द्वारा भी बीज कहां कहां दूर दूर तक फैलते हैं, जमीन में गिरते रहते हैं। ये स्थापना का कार्य, वही बीज जमीन का संयोग पाकर, पांच तत्वों की पालना पाकर वो बीज अंकुरित होता है, पौधा उगता है, वृक्ष बनता है, ये पालना का कार्य हुआ। और वही प्रकृति के पांच तत्व जब तमो प्रधान बनते हैं तो वे विनाश का भी कार्य करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आती है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कितना विनाश का भी कार्य होता है। तो ये है प्रकृति के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य, जो चलता ही रहता है। और प्रकृति अपनी ही प्राकृतिक चेतना शक्ति से ये स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करती है। इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विज्ञान के विकास के पहले तक समाज में काफी अंधश्रद्धा थी, अभी भी कई लोग उस अंधश्रद्धा में होते हैं। वे मानते हैं कि सूर्य भगवान है, चंद्र देवता है। वे कहते हैं भगवान ही सूर्य चमकाते हैं, भगवान ही बिजली चमकाते हैं, भगवान ही बरसात बरसाते हैं। लोग इतने तक मानते रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना क्या कहते पत्ता भी नहीं हिलता है, इतने तक लोग मानते रहे। पर अब विज्ञान के विकास के बाद ये सब अंधश्रद्धा काफी दूर हुई है। अब हम जानते हैं कि वास्तव में सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, कैसे वो प्रकाश देते हैं, बिजली कैसे कड़कती है, बरसात कैसे बरसती है, हवा कैसे चलती है, पत्ते कैसे हिलते हैं। ये प्रकृति स्वयं अपने कार्य करती है, इसमें परमात्मा का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। आप जानते हैं जब बरसात नहीं होती है तो लोग समझते हैं कि प्रकृति का प्रकोप हुआ है, ईश्वर नाराज हुआ है, पर परमात्मा कभी नाराज नहीं होते हैं। परमात्मा कभी कोपाईमान नहीं होते हैं, है ना। परमात्मा की महिमा तो हम क्या करते हैं, कि वो दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, प्यार का सागर है। प्रकृति कभी कोपाईमान नहीं होती है, इसलिए प्रकृति स्वयं अपने तरीके से स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करते रहती है। अब हम चैतन्य शक्ति, आत्माएं कैसे स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करते हैं, तो देखिए हम प्लानिंग करते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, योजना बनाते हैं, ये स्थापना का कार्य हुआ। उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उसको पालना का कार्य कहते हैं। और वही मनुष्य आत्मा जब पतित तमो प्रधान बनती है तो विनाश का भी कार्य करती है। आपस में अनबन, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, मारामारी, खून युद्ध के द्वारा विनाश का भी कार्य करते हैं। तो ये है मनुष्यात्मा के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य। अब इसके लिए भी लोगों में अनेक मत हैं। कई मानते हैं, मान लो कई बार हम कोई गलत काम करने के लिए आवेश में आ जाते हैं। हमें अंदर से होता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस अंतः प्रेरणा के बारे में लोग ये मानते रहे हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान पाप ना करने के लिए कहता है, पर आप खुद भी अनुभवी होंगे और कईयों के अनुभव में भी सुना होगा, देखा होगा कि कई बार हम ऐसी अंतः प्रेरणा को दबा कर भी गलत काम कर लेते हैं। अंदर से इनर वॉइस आता है कि ये ठीक नहीं है, गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम इनर वॉइस को भी दबाकर गलत काम कर लेते हैं। तो ये सोचने की बात है कि परमात्मा की अगर वो प्रेरणा होती तो वो इतनी कमजोर क्यों है जो इंसान उसको दबाकर भी पाप कर ले। फिर तो ऐसी प्रेरणा का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर अच्छे विचार आते हैं, शुभ कर्म करने की प्रेरणा आती है, वो अगर परमात्मा की है तो क्या इंसान गलत ही सोचता है? क्या इंसान बुरा ही सोचता रहता है? अगर हम बुरा ही सोचते, बुरा ही करते तो बुरा ही फल पाते ना, दुख ही पाते ना। पर आज तक भी हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर हम दुख पाते हैं तो हम सुख भी पाते हैं ना। मीन्स हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। तो वास्तव में सत्य ये है कि मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है वो खुद के संस्कारों के वश कर्म करती है। संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करते हैं। अगर मेरे अंदर अच्छे संस्कार शक्तिशाली हैं, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति बुरे वातावरण में, बुरे संग में नौकरी धंधा करते हुए भी अच्छे बने रहते हैं, गलत नहीं करते हैं। और जिनके संस्कार गलत हैं, वो अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करते रहते हैं। तो वास्तव में मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करते। इसलिए मनुष्य आत्मा खुद सोचता है, करता है, इसलिए मनुष्य आत्मा स्वयं ही भोगता है। समझा? आई बात समझ में सबको? हाँ, कि हम जो कर्म करते हैं उनके जिम्मेवार कौन है? हम खुद ही हैं। हम ही अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करते हैं। वास्तव में हमारे कर्म, वाणी, विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। सत्य तो ये है कि हम मनुष्य आत्माओं के विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए जब हम पवित्र हैं, सात्विक हैं, तो हमारे प्रभाव से प्रकृति, पशु, पंछी, जगत भी सत्व प्रधान होता है। कई उदाहरण से मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए, ये रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, लिखा हुआ है कि जब राम राज्य था तो शेर और गाय, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। माना जब हम देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, हमारे मन वचन कर्म सत्व प्रधान थे, तो उसके प्रभाव से प्रकृति, पशु, पंछी, जगत भी सत्व प्रधान होते हैं। द्वापर युग के ये प्राचीन ऋषि मुनियों का भी गायन है कि वे घने जंगलों के बीच आश्रम गुरुकुल बनाकर रहते थे और तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के इतने वाइब्रेशंस पावरफुल पॉजिटिव होते थे और जंगल में भी फैलते थे, जो बाघ, चीते, शेर जैसे हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। जब हमारी मनोवृत्ति सात्विक होती है तो उसके प्रभाव से प्रकृति भी सात्विक होती है। ये भी एक काव्य हमें स्कूल में आता था, हम गुजरात में पढ़ते थे। कवि कलापी का ये काव्य है, जिसकी कहानी ये बताती है कि मनुष्य के स्वभाव, संस्कार और कर्म का प्रभाव कैसे प्रकृति पर भी पड़ता है। कि एक राजा था, वो बहुत प्रजावत्सल था और मेरी प्रजा सुखी है या नहीं ये जानने के लिए वो वेश बदलकर नगर चर्चा करता था। एक बार राजा वेश बदलकर मुसाफिर बनकर घोड़े पर सवार होकर एक किसान माता के खेत में जाता है और वो माता जहाँ गन्ने की खेती, फसल बहुत अच्छी उगी हुई होती है, वो गन्ना काटकर जूस निकालकर ग्लास भरकर राजा को देती है, जिसको वो मुसाफिर के रूप में देखते हैं। वो भी गन्ने का रस पीकर बहुत तृप्त होता है, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट वो रस था और बहुत सारा था। खेत से निकल लौटते राजा के मन में विचार आता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल होती है तो इससे तो राज्य की तिजोरी को भी कोई फायदा होना चाहिए। उसे विचार आता है कि थोड़ा टैक्स डालना चाहिए, तो वो उस पर टैक्स डालता है। दूसरे साल वापस उसी किसान माता के खेत में जाता है, फिर माता गन्ना काट रस निकालती है, पर कम निकलता है और स्वादिष्ट नहीं है। तो राजा जो मुसाफिर के रूप में है, वो किसान माता को कहता है कि माता इतना ही रस क्यों निकला और ये तो इतना स्वादिष्ट नहीं है। तब वो माता कहती है कि दयाहीन हुआ राजा, रसहीन हुई धरा। हाँ, जब से हमारा राजा दयाहीन हो गया तब से ये धरा भी रसहीन हो गई है। तो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। हमारे देश के ही वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी ये संशोधन करके बताया था कि अगर हम अपने बाग बगीचों में सुमधुर सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो पेड़ पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। और इस बात को ब्रह्मा कुमारीज ने भी प्रैक्टिकल करके देखा है। आप सबको पता हो कि ब्रह्मा कुमारीज की जो ग्राम विकास प्रभाग है, रूरल डेवलपमेंट विंग है, क्योंकि हमारे लगभग 32,000 से ज्यादा क्लासेस, पाठशालाएं, सब सेंटर्स गांव में हैं, तो गांव के भाई बहने खेत में योग करते हैं। बीज बोने से लेकर फसल काटते हैं तब तक खेती के हर प्रोसेस में वे योग करते हैं, योग के वाइब्रेशंस देते हैं। और इसके इतने अच्छे परिणाम मिले हैं कि क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छी अनाज उगता है, फल फूल उगते हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने, एक गुजरात दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पूरे स्टेटिस्टिक लिए, डाटास कलेक्ट किए और साइंटिफिकली उन्होंने सर्टिफाई किया कि योग के प्रयोग से फसल बहुत अच्छी उगती है। ये भी देखिए, यूरी गैलर नाम का एक साइकिक पावर वाला व्यक्ति है जो अपने थॉट पावर से चम्मच बेंड कर देता है, चाबी बेंड कर देता है, चलती घड़ियां रोक देता है। यूरी गैलर और दादी जानकी जी का लंदन के अल्बर्ट हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, उस समय भी यूरी गैलर ने हाथ में बीज लिए थे और थॉट पावर से हाथ में ही बीज को अंकुरित करके बताया था। ये है थॉट्स का पावर। तब दादी ने बताया कि देखो राजयोग से हम मन को शुद्ध करते हैं, जिससे हर थॉट को पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल बना सकते हैं। तो साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव है। और हमारे देश के बड़े बुजुर्ग, हमारी संस्कृति तो सदा हमें सिखाती रही है कि हमारे विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। भोजन बनाते समय जिस प्रकार के विचारों में, भावों में हम रहते हैं, उसका अन्न पर प्रभाव पड़ता है। और उस अन्न को खाने वाला व्यक्ति जो है, उसके मन पर भी ये प्रभाव जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, हम कहते हैं। हम प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि एक होटल में बिजनेस पर्पस से बनाया हुआ भोजन, घर में माँ बहनों ने प्यार से बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में बनाया हुआ प्रसाद, तीनों में अंतर क्यों है? है ना अंतर? किस बात का अंतर है? ये थॉट्स, वाइब्रेशंस। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में ज्यादा रहती है तो हम कहते हैं ना कि लगता है इसको कुछ खिला दिया। कहते हैं ना लोग ऐसा कि उसको कुछ पिला दिया है, इसी के प्रभाव में रहता है, इसी के गीत गाता है। हाँ, तो ये थॉट्स का प्रभाव अन्न द्वारा व्यक्ति के मन पर पड़ता है। टोटल कहने का भावार्थ ये है, हम मनुष्य आत्माओं के मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पशु पंछी जगत पर पड़ता है। भाइयों और बहनों, हम मनुष्य आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर्स है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी किसको कहते, किसको कहते? सब सुन रहे हैं ना, तो आवाज तो आ नहीं रही है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी मनुष्य आत्मा को कहते हैं। इसलिए हम मनुष्य आत्माएं जब मन वचन कर्म से पवित्र और दिव्य है तो पशु पंछी प्रकृति जगत भी सतो प्रधान है, संसार तब स्वर्ग कहा जाता है। समझा? संसार तब स्वर्ग कहा जाता है। जब हम पतित भ्रष्ट बनते हैं, हम अपने जीवन के नियम संयम मर्यादाएं तोड़ते हैं, तो हमारे प्रभाव से पशु पंछी प्रकृति जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहते हैं, वे भी उपद्रवी बनने लगते हैं। वो देख रहे हो ना प्रभाव आजकल, क्योंकि जब इंसान बिगड़ जाता है तो संसार बिगड़ जाता है। इसलिए हम मनुष्य आत्माएं जब पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समय उसको कहते हैं, तो प्रकृति भी पतित तमो प्रधान दुखदायी बनती है। आप देखो, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग समुद्र बीच पर दौड़ते हैं, समुद्र में स्नान करते, कहीं आग लग रही है, कहीं अर्थक्वेक हो रही है। एक साथ चारों ओर का समाचार आप तो पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि प्रकृति कितनी विषम बन गई है, क्योंकि हमारी इंटरनल नेचर जब विकृत बन जाती है तो आउटसाइड नेचर भी विषम बन जाती है। और इस प्रकार हम मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों जब पति तमो प्रधान बन जाते हैं, तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमें सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं। जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन बनना है और हम मनुष्य आत्माएं पावन बनेंगे तो क्रमशः ऑटोमेटिक पशु पंछी प्रकृति भी पावन बनते हैं। ऑटोमेटिक वो चेंज आता है, इसलिए परमात्मा हमें स्लोगन देते हैं कि अगर दुनिया बदलनी है तो क्या करना होगा, स्वयं को बदलना, स्वयं से शुरुआत करनी, अपने आप प्रकृति पशु पंछी जगत फॉलो करते हैं। तो सृष्टि का ये खेल अनादि अविनाशी है। प्रकृति जगत के छोटे छोटे कई चक्र है जो अनादि अविनाशी रूप से चलते ही आ रहे। चित्र में आप देखिए दिन और रात का खेल देख रहे हो ना? हर कोई साक्षी है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये खेल अविरत गति से चल ही रहा। कितनी भी घोर अंधेरी अमावस की रात हो तो भी सवेरा होता ही है। तो ये डे नाइट का साइकिल है जो अनादि रूप से चलता ही आ रहा है। ऐसे मौसम का साइकिल, सीजन अपने आप बदलती रहती, गर्मी पड़ती है, बरसा होती है, सर्दी आती है, फिर वापस गर्मी, बरसात, सर्दी, ये मौसम का साइकिल है जो अपने आप बदलता रहता है, चलता रहता है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु। बरसात का साइकिल भी आप जानते हैं, जनरल साइंस में पढ़ते हैं ना, कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, आसमान में जाता है, बादल बनता है, फिर बादल बरसते हैं, नदी झरने बहते हैं और वो नदी झरने वापस समुद्र में जाकर मिलते हैं। इट इज ए साइकिल, सेम द होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि अविनाशी रूप से चलता ही आ रहा है। हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन है। डे एंड नाइट का साइकिल 24 घंटे का है, सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है और फिर वापस वही संडे मंडे ट्यूसडे। इसलिए कहते हैं ना, वे 7 दिन का जीवन है। वर्ष का साइकिल देखिए 12 मास का है, वापस वही जनवरी फरवरी मार्च। तो देखो प्रकृति के इन साइकिलों का टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स है। डे नाइट 24 घंटे में बदलते हैं, सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है, वर्ष का साइकिल 12 मास का है, सेम द होल वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है। हर 5000 वर्ष के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। इसलिए आपको स्पष्ट रहे कि सृष्टि का खेल अनादि अविनाशी है, 5000 वर्ष का है और प्रति 5000 वर्ष के बाद ये वापस रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप पुनरावृत्त होता है। इसलिए इतिहास का अर्थ, हिस्ट्री का अर्थ एक ये है टाइमलेस, जो चलता ही रहता है, अनगिनत बार ये चक्र रिपीट होता रहा है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हम आत्माएं अनादि अविनाशी है, हर आत्मा का रोल भी अनादि अविनाशी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये बना बनाया खेल है, बना हुआ ही बन रहा है, नया कुछ भी नहीं है। नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए गुरु नानक जी ने भी ये शिक्षा दी है कि चिंता ताकि कीजिए अनहोनी होए, अनहोनी हो तो चिंता करिए, जो हुआ था वो ही हो रहा है, बना बनाया बन रहा है, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। क्या बना था हमें पता नहीं है, इसलिए जब होता है तो हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे होगी, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं है, हम इस संसार खेल के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इसलिए जब भी कोई घटना होती है मनुष्य को आश्चर्य होता है, प्रश्न होता है, क्योंकि जानते नहीं है। पर जब हम ये सत्य ज्ञान समझ लेते हैं कि बनी बनाई बन रही है, इसलिए आश्चर्य करने की बात ही नहीं। क्या बना था हमें पता नहीं है, इसलिए जो कर्म हम करें हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हम उसे श्रेष्ठ बनाने की अच्छे से अच्छी मेहनत करें। इसलिए गीता में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है, कर्मण्य व्याव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। इसलिए जब हम कर्म करें तो बहुत पूरा पुरुषार्थ करें उस कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए। उसके बावजूद जो कर्म का फल आए तो हम प्यार से स्वीकार कर लें कि चलो जो नसीब में था वो हुआ। इसलिए कहा ना, कर्म पर अधिकार है परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम जो कर्म का आता है वो तो पीछे का कर्मिक अकाउंट जो बैक फॉरवर्ड होता है वो मिलाकर आता है। भई आपने बैंक में जमा खाते से 2 लाख निकाला है, आपका डेबिट बोल रहा है हिसाब, अभी आप 50,000 जमा करते हैं, फिर भी आपका खाता डेबिट बोल रहा है। आप कहे कि अरे 50,000 तो मैंने जमा कराए, डेबिट कैसे बोल रहा है, मैंने तो जमा कराए ना। पर आगे का जो माइनस है तो हिसाब तो डेबिट का ही आएगा ना। इसलिए कर्म हम वर्तमान में करते हैं, पूरी ताकत और मेहनत से करते हैं, पर रिजल्ट तो हमारे पिछले कर्मों के माइनस प्लस हिसाब के अनुसार आता है। वो हम नहीं जानते हैं ना कि पिछला हिसाब क्या है, इसलिए प्रश्न में जाते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर हमने ऐसा किया होगा तब तो हुआ। आज एक व्यापारी है, कमाने के लिए वो अच्छे से अच्छी मेहनत करता है, पर कोई कारण से सफलता नहीं मिलती है तो क्या कहते हैं? उस समय आप क्या कहते कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की पर जो नसीब में था वो हमें मिला। हमारा कार्य है पुरुषार्थ करना। आगे का अगर माइनस है तो वो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा ना, इसलिए हमें सावधान होना है कि हम ऐसे कर्म ना करें जो माइनस का खाता बने और ये रिजल्ट आए हमारे सामने कि मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले, ऐसी परिस्थिति ना बने। उसके लिए हमें अपने कर्म अच्छे से अच्छे करने चाहिए। ज्योतिष विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर आधारित। अगर ये वर्ल्ड ड्रामा रिपीट होता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो ही ज्योतिष विज्ञान हो सकता है। देखो आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपके हाथ दिखाते हैं, रेखाएं दिखाते हैं कि भाई बताओ मेरे नसीब में क्या लिखा है, और वो ज्योतिष बताता है कि भी आपकी रेखाएं बता रही है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, ये होगा, इतनी आयु के बाद ये होगा, वो होगा, बताते हैं ना। ज्योतिष के पास जाते होंगे ना। हाँ, कई लोग जाते रहते हैं ना, कई तो देखो आदत है, कईयों को सुबह उठते हैं अखबार में पहली ही कौन सी कॉलम पढ़ते, हाँ राशि फल पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि वो ज्योतिष ने बताया कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, अब ये वो कब बता सकता है? जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित है, तब तो वो बताता है ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर वो घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए वर्ल्ड ड्रामा का ये एक अद्भुत रहस्य है, जिसको हम स्वीकार करेंगे तो ही परिस्थितियों के आने पर हम अपने मन को फुल स्टॉप दे सकेंगे, वरना आप क्वेश्चन की क्यों में रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब हमारा ये प्रश्न ही जवाब देता है ना कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ। बेसिकली ये ड्रामा खराब होता तो सबके साथ होना चाहिए था, पर मेरे साथ ही क्यों हुआ, जरूर मेरा कर्मिक अकाउंट माइनस बोल रहा है, इसलिए ये परिस्थिति। आज देखो हम कहते हैं यहाँ हवा का साइक्लोन उठा, यहाँ ही क्यों उठा, वहां क्यों नहीं उठा, साइंटिफिक रीजन क्या है कि यहां जब हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो चारों ओर की हवा इधर धस के आ जाती है और बवंडर उठता है। सेम हमारे अच्छे कर्मों का हिसाब कम हो जाता है तब परिस्थितियों का बवंडर क्रिएट होता है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा 5000 वर्ष का है जो चार स्टेजेस से गुजरता है, जिसे चार युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसे स्वस्तिक के रूप में दिखाया है। देखिए आप, स्वस्तिक का चिन्ह हम भक्ति मार्ग में निकालते हैं ना, हर शुभ कार्य में, मुहूर्त में, उद्घाटन में ब्राह्मण पहले स्वस्तिक निकालता है, पर हम जानते नहीं हैं कि वास्तव में स्वस्तिक क्या है और क्यों निकालते हैं। व्यापारी भी अपने अकाउंट के रजिस्टर में नया अकाउंट का रजिस्टर शुरू करते हैं तो गणेश निकालते हैं, ऐसे कहते हैं ना, स्वस्तिक निकालते हैं और दो शब्द लिखते हैं, कौन से, शुभ और लाभ। पर स्वस्तिक हम निकालते हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं। और आज शुभ शब्द हमने उड़ा दिया है। हर एक व्यापारी क्या सोचता है, लाभ होना चाहिए, बस शुभ रीति से लाभ होना चाहिए, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। पर वो ज्ञान ही हम भूल गए कि वो शुभ रीति कौन सी है, इसलिए सिर्फ लाभ पर हम ध्यान देते। तो वास्तव में स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। उनके चार सरीखे भाग चार युग की निशानियां हैं। हर साइकिल चार स्टेजेस से गुजरता है। देखो, डे एंड नाइट का साइकिल सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चार स्टेज से गुजरता है। मौसम का साइकिल आप देखिए, बसंत बहार आती है, फिर गर्मी, सर्दी, पतझड़, है ना, और पतझड़ के बाद वापस बसंत बहार आती, कितना वंडरफुल है। यहां आप अगर उस समय आओ तो एक पेड़ पर आपको एक पत्ता नहीं दिखेगा, और फिर वापस पूरी प्रकृति खिल उठती है। ये साइकिल है, बसंत, गर्मी, सर्दी, पतझड़। लाइफ साइकिल भी बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। संसार का खेल भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन इस प्राकृतिक जगत का नियम है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील। आप चाहो कि मैं बूढ़ी होंगी, नहीं चलेगा। इट्स ए साइकिल, प्रकृति का नियम है। हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती है, जर्जरीभूत हो जाती है, टूट फूट खत्म हो जाती है। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से वापस नई बनती है। हम आत्माएं भी जब प्रकृति का बना शरीर धारण करते हैं, जन्म मरण में आते हैं, अर्थात समय और प्रकृति के प्रभाव में आते हैं, हम भी सतो प्रधान सतो रजो और तमो स्थिति से पास होते हैं और हमारे आधार पर संसार भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो स्थिति को प्राप्त। अब आप देखिए चित्र में कि स्वस्तिक का हाथ सतयुग में किस तरफ है, राइट साइड है। ये शुभ की निशानी कि जब हम आत्माएं सत्य है तो प्रकृति भी सत्य है और उस टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता है। उस समय हम 100% सुख शांति और पवित्रता को प्राप्त है। उस समय को सतयुग स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। हर धर्म इस बात को स्वीकार करता है। मुस्लिम्स भी इस टाइम पीरियड को जन्नत बहिष्ट कहते हैं, क्रिश्चियन भी हेवन पैराडाइज कहते हैं और सिख भाई बहने भी उसे सचखंड सुखधाम कहते हैं। ये गोल्डन पीरियड है जब सब कुछ A1 क्वालिटी में है। ये पूर्ण सुख की दुनिया पर परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए हर परिवर्तन में शक्ति खर्च होती रहती। धीरे धीरे आप देखिए त्रेता युग में स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से डाउन जा रहा है। माना त्रेता युग में भी हम राइटियस है, प्योर है, सुखी है, पर परसेंटेज डाउन होती चीज बिल्कुल नई हो और 10 दिन भी यूज करो तो उनकी चमक दमक में अंतर आ जाता है। हम कह सकते हैं कि सतयुग स्वर्ग है और त्रेता युग सेमी स्वर्ग है ना। थोड़ी भी डिफेक्ट होती है तो इस दुनिया में भी उस माल को सेकेंड हैंड माल कहते हैं। वहां डिफेक्ट नहीं है, न्यूनेस कम होती। त्रेता युग में भी हम पतित नहीं है, कर्म हमारे बिगड़े नहीं है, चीज टूटी फूटी नहीं है, खराब नहीं हुई है, न्यूनेस कम हुई है। तो दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में सुख शांति पवित्रता होती। अब द्वापर युग से पुण्य का खाता क्षय होता है। हम आत्माएं फिर से देहभान में आती। देहभान के कारण वासना विकार उत्पन्न होते हैं, अपवित्रता आती है। इसलिए देखिए स्वस्तिक का हाथ द्वापर युग में लेफ्ट साइड है। अशुभ की शुरुआत होती है। हम फिर से बॉडी कॉन्शियस पतित बनते, दुख अशांति की शुरुआत होती है। भौतिक धन संपत्ति है पर आंतरिक सुख कम होने लगता है। और कलयुग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड से ऊपर गया है, अशुभ की अति वृद्धि होती है। कलयुग को आयरन एज कहते हैं। यहां हम आत्माएं 100% पतित, दुखी और अशांत हो जाते हैं। इस दुनिया में 100% सुखी कोई इंसान नहीं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास जन संबंधों का सुख नहीं। ये दुख की दुनिया है। कलयुग अंत देख रहे हैं हम सभी कि दिन प्रतिदिन दुख शांति विकार पाप कर्म भ्रष्टाचार व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय को कौन सा समय कहेंगे आप? वर्तमान समय को कौन सा समय कहेंगे जो आप देख रहे हैं दुनिया में? कलयुग का अंत समय। ये घोर कलयुग का समय है, अति धर्म ग्लानी का समय इससे कहते हैं। मुस्लिम भाई बहने कयामत का समय कहते हैं। क्रिश्चियंस फाइनल डिसीजन डे कहते हैं। ज्यूज लोग डूम्स डे कहते हैं। ये वो ही कलयुग अंत का समय, अति धर्म ग्लानी का समय, महापरिवर्तन का समय। इसलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल, जिसे संगम युग कहते हैं, वर्ल्ड ड्रामा का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और कलयुगी पतित नर नारी को सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, पवित्र योगी बनाते हैं। हम कलयुगी मनुष्य से सच्चे मानव पवित्र योगी बन सकते हैं और पुरुषार्थ करके सच्चे मानव से संपूर्ण मानव देवता बनते हैं। कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुग। ये साइक्लिकल ऑर्डर है। बताया ना, अमावस हो तो भी सूर्य उगता ही है। सेम ये वर्ल्ड ड्रामा का साइक्लिकल ऑर्डर है कि कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है। डेथ के बाद फिर से बचपन जन्म आता है। इसलिए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल महापरिवर्तन की वेला के समय स्वयं परमात्मा का आदेश है, हम मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो। जो कलयुगी नर नारी इस महापरिवर्तन की वेला को पहचान कर पिता परमात्मा के आदेश को मान्य रख अपने इस अंतिम कलयुगी जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनेंगे। सुना सब दे? क्या विचार है आप सबका? हाँ, सुनकर चुप नहीं रहना है। बनना ही है। हाँ, इधर से तो कोई जवाब ही नहीं आया भाई। सुना तो सबने ना, स्वयं भगवान हमें कलियुगी पतित मनुष्य से सच्चा मानव पवित्र योगी बनाते हैं। दो चीज, इस समय की पुकार को समझकर और परमात्मा के आदेश को मानकर जो अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे वे सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनेंगे। अब हाथ ऊपर करो, कौन कौन बनाएंगे? सच सच बोलना। जितना भी परसेंटेज में परमात्मा का आदेश जो मानेगा उतने परसेंटेज में वो प्राप्ति करेगा, है ना। कहीं इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं कि हम यहाँ हाथ उठाएं और वहां जाकर पालन ना करें तो भगवान नाराज होंगे, हम श्रापित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भाइयों और बहनों, जितना दिन भी आप पालन करेंगे उतना फायदा है। आप नहीं करेंगे आप नहीं पाएंगे, भगवान क्यों कोपायमान होगा? महान आत्मा कभी कोपायमान नहीं होती, महान आत्माएं कभी श्राप नहीं देते। इसलिए भय की बात नहीं है, जितना मानेंगे उतनी प्राप्ति होगी। 10 दिन भी अगर आपने इस ज्ञान को धारण किया, जीवन को पवित्र बनाया, तो फायदा ही है ना, नुकसान थोड़ी है। तो अभी जो समय चल रहा है इसका वैल्यू आपने पढ़ी कि ये परमात्मा मिलन का समय, स्वयं भगवान पावन बनाने आते, इसलिए हम कहते हैं अभी ही, अभी नहीं तो। बराबर पावर से बोलो अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि परमात्मा और युग में नहीं आते हैं, परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। ध्यान से समझना, युगे युगे आते तो कलयुग क्यों हुआ? परमात्मा ने आके फिर क्या किया? तो युगे युगे परमात्मा नहीं आते हैं, हर कलयुग के अंत, हर 5000 वर्ष के अंत एक ही बार परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए वर्तमान समय ही कलियुग अंत सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग का समय, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ज्ञान दे रहे हैं और वही सत्य ज्ञान आप सुन रहे हैं। यही वो कल्याणकारी समय है। हम अपने आप को जितना महान श्रेष्ठ दिव्य पवित्र बनाना चाहे हम बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमाइटी परमात्मा बना रहा है। इसलिए अभी मौका है, अपने आप को जितना ऊंचा बनाना चाहे बना सकते हैं। सृष्टि खेल की तुलना फिल्म के साथ की है, ड्रामा के साथ की है। ये सृष्टि रंगमंच है, हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है। शरीर हमारी ड्रेस है और वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। आप देखिए सुबह से रात तक कितने रोल्स आप प्ले करते हैं, बच्चों के साथ आप माँ बाप के रोल में हैं, पति के साथ पत्नी के रोल में हैं, माँ बाप के आगे बच्चे के रोल में हैं, आप अपनी दुकान में सेठ के रोल में हैं, नौकरी में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रोल में हैं, है ना। कितने रोल्स हम प्ले करते, पर हम ये रोल्स नहीं हैं, हम ये शरीर ड्रेस नहीं है, हम तो इस वर्ल्ड ड्रामा की अविनाशी आत्मा एक्टर है। हमारी सबसे बड़ी भूल इस ड्रामा में यही है कि जो शरीर ड्रेस है, हमने अपने आप को ही शरीर समझ लिया। कोई ड्रामा में एक्टर राजा का ड्रेस पहनता है और वो अपने आप को राजा समझ ले और घर जाकर भी कहे मैं राजा हूँ, मेरा हुक्म है, तो घर वाले कहेंगे भाई रहने दो, तुम फिल्म में राजा थे, घर में नहीं। हाँ, वो तुम्हारा रोल था, वास्तव में तो आप ये हैं। तो ये हमारे रोल्स है, हम ये समझने लगे कि मैं इनका पति हूँ, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनकी सास हूँ, मैं सेठ हूँ, ये नौकर। हमने इस अभिमान में अपने रोल को बिगाड़ दिया। इसलिए परमात्मा पहला पाठ ही ये पक्का कराते कि आप शरीर ड्रेस नहीं हैं, आप ये रोल्स नहीं हैं, आप आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ये आपकी पहचान है। आज अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में कुली बनते हैं तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि अमिताभ बच्चन जी कुली है, ऐसा कहेंगे? अथवा अमिताभ बच्चन जी खुद को कहेंगे कि मैं कुली हूँ? नहीं, इट्स ए रोल। सेम ये हमारे रोल्स है, हम आत्मा हीरो एक्टर हैं, वैरायटी रोल्स हीरो प्ले करते हैं ना। देखो, हीरो एक्टर पागल का भी रोल प्ले करता है, तो शराबी का भी करता है, तो पुलिस इंस्पेक्टर का भी करता है, तो डाकू का भी करता है, पर वो रोल है, वो है तो आत्मा एक्टर ना। और ये वर्ल्ड ड्रामा बिगड़ क्यों गया? दो भूल और हमने की, अपने रोल पर ध्यान देने के बजाय हम क्या करते हैं, दूसरों के रोल पर ध्यान देते। हर एक्टर का कार्य क्या है? अपना रोल बेस्ट प्ले करना, अपने रोल पर ध्यान देना। दूसरे एक्टर ठीक करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं, कम करते हैं, ये देखना किसका काम है? डायरेक्टर का। हम सब क्या करते हैं, खुद के कर्मों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के कर्मों पर ध्यान देते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, ये कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हम दूसरों के कर्मों पर ध्यान देते हैं, उसी का रिजल्ट आज ये है कि हमारे कर्म बिगड़ गए। तीन डांसर डांस कर रही है, एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी के ताल को देखती है कि इनका ताल मिलता है कि नहीं, इनका ताल मिलता है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया, समझ गए ना सभी? खुद के कर्मों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के कर्मों को देखते रहते हैं, इसलिए हमारा जीवन बिगड़ गया, टोटल ड्रामा बिगड़ गया। और फिर हम कहते हैं दुनिया खराब है, संसार का खेल मिथ्या है। पर किया किसने, बिगाड़ा किसने? हमने बिगाड़ा। और दूसरी भूल ये करते हैं कि खुद का रोल प्ले करने के बजाय दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। आज एक दृश्य में चार एक्टर है, एक को कहा है आपको हंसना है, उसी समय दूसरे को रोना है, तीसरे को गुस्सा करना है, चौथे को बोलना है, पर एक को गुस्सा करते हुए देख दूसरा भी गुस्सा करे, तीसरा भी करे, चौथा भी करे, तो क्या होगा? ड्रामा ही बिगड़ जाएगा। तो हम भी क्या करते, हम यही कर रहे हैं, सब ऐसा करते हैं, इसलिए हम भी ऐसा करते। लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसे हैं, इसलिए ऐसा करना ही पड़ता है। हमने अपने कर्मों को बिगाड़ा और पूरा ड्रामा बिगड़ गया, इसलिए बाबा आते हैं और हमें कहते हैं कि नाटक का ये साइकिल अब पूरा हो रहा है। अपने आप को भूलकर, अपने आप पर ध्यान देने के बजाय, स्वदर्शन स्वचिंतन करने के बजाय दूसरों पर देखने से ड्रामा बिगड़ गया। तो अब इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अब ये साइकिल 5000 वर्ष का यह चक्र अब पूरा हो रहा है, अब नाटक पूरा होता है तो एक्टर्स को क्या करना होता है? अब अपनी नाटक की ड्रेस उतार कर अपने नॉर्मल ओरिजिनल स्वरूप में वापस घर जाना है। तो ये नाटक पूरा हो रहा है, अब इस शरीर रूपी ड्रेस को उतार कर हमें अपने वापस ओरिजिनल शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होकर वापस घर जाना है। कौन सा घर? पक्का है ना, परम धाम। इसलिए बाबा रोज प्रैक्टिस कराते हैं। रोज हम योग में क्या करते हैं? देह भान से न्यारे होते, अपने ओरिजिनल शुद्ध सत्य पवित्र आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। उस अविनाशी पिता जिसके साथ हमें वापस घर जाना है, उस पिता को याद करना है। और ये बट नेचुरल, आपको जिसके साथ जाना हो, जहां जाना हो, वही तो याद रहेंगे ना, वही याद रहेगा ना। अभी मुझे किसके साथ जाना है, मेरे साथ कौन आएगा, हम यही पूछते हैं ना। और कहां जाना है, तो अब अपने घर को याद रखना है और जिस पिता के साथ जाना है उस पिता को याद करना है। जहां जाना है, आपको अमेरिका जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर उस देश में जाना है तो वहां के रूल्स रेगुलेशंस मानना पड़ेगा, तभी वीजा मिलेगा। हमें भी वापस घर जाना है और आगे क्या करना है? घर में ही बैठे रहना है या सतयुग में आना है? भाई हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है घर में बैठने का, आराम करने का, तो भी भाई कहते हैं ना थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। कुछ भी काम नहीं होगा तो भी कहेंगे मैं आता हूँ थोड़ा चक्कर लगा के। इंसान का नेचर है कि वो फ्री बैठ नहीं सकता। आत्मा की ये क्वालिटी है कर्म करना। इसलिए दोनों ये बातें याद रखना है कि वापस घर जाना है और नई सतयुगी दुनिया में आना है। नए मकान में रहना पसंद आता है कि पुराने में? नए मकान में अच्छा लगता है ना। मकान पुराना होता जाता है तो तकलीफें शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वापस घर चलना है, इसके लिए पवित्र बनो, योगी बनो। और सतयुगी दुनिया में आना है तो दैवी गुण धारण करो और सत्कर्म की सेवा करो। सत्कर्म का फल सतयुग मिलेगा ना। दिव्य गुण से देवता बनेंगे, नई दुनिया में जा सकेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। अभी अपने आप को जो जिस युग के लायक बनाएगा वो उस युग में आएगा। महाविनाश के बाद हम सभी वापस घर जाएंगे। होलसेल जाते हैं ना, वे नाटक देखने आते हैं तो नंबरवार आते रहते हैं और छूटता है तो होलसेल निकलते हैं ना बाहर। तो ये होलसेल वापस घर जाना है और नंबरवार आना है। जो जिस युग के योग्य बनेगा वो इसमें आएगा। अब आप निर्णय करिए कौन से युग में आना है। देखो पुरुषार्थ करने की बात आई तो कोई नहीं बोल रहा है। किस युग में आना है? सतयुग में आना है ना। तो फिर ऐसा बनना है ना, ऐसा बनना है। हमारा कार्य तो पुरुषार्थ करना है ना। जिस लेवल पर आप पहुंचेंगे वहां आप कहेंगे कि भाई मेरा यही फिक्स था, पर मेहनत तो हमें 100% का एम रखकर करनी है ना। कोई व्यक्ति पहले से ही कहे कि बस पास क्लास हो जाए तो बहुत है, तो वो तो कैसे होगा। फर्स्ट क्लास का एम रखो तो एटलीस्ट सेकंड क्लास तो आएगा ना। इसलिए हाथ जोड़ के बैठे नहीं रहना है कि कल पहले जिसमें आए होंगे आएंगे। नहीं, हर इंसान बाकी हर बात में मेहनत करता है। कोई नसीब में जो मिलेगा सोच के बैठा नहीं रहता है। नए नए मेहनत करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। तो आध्यात्मिकता में भी हाथ जोड़ के बैठे नहीं रहना है कि जो कल पहले मिला होगा वो मिलेगा। नहीं, क्या मिला है पता नहीं है, तो मैक्सिमम पाने का पुरुषार्थ करना है। तो आप सबको बेस्ट लक है कि नई दुनिया में आना है और नई दुनिया में भी हाईएस्ट पद पाना है। हर व्यक्ति प्रमोशन के लिए मेहनत करता है, आगे बढ़ने की मेहनत करता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचा उठना है। ओम शांति।
आज की जो पृष्ठभूमि है, आज का जो वातावरण है, उस पे कुछ पंक्तियां इधर उधर है, सभी तरफ है, इधर उधर है, सभी तरफ है। हाहाकार जमाने में शिव को भूला बैठा मानव, लगा है धाक जमाने में। शिव को भूला बैठा मानव, लगा है धाक जमाने में, घर बंगला गाड़ी पैसा है पर मन ना शांत जमाने में। कुछ एक दो लाइनें और। जाने क्यों यह इंसान ढो रहा है, जाने क्यों यह इंसान ढो रहा है मनोवजन खुद के वजूद पर। फिर एक लाइन और है जो काफी सटीक है। आखिर कब तक चूसेगा अपने ही दांतों से स्वजनों का लहू। ये हम सभी के लिए प्रयुक्त होती हैं ऐसे समय में। दीदी जी, आपके जो वचन हैं वो हमारे तप्त हृदय पर मरुस्थल में एक मीठी वर्षा के समान है। दीदी जी एक प्रेममयी शांत स्वरूप मां शारदे का ही एक रूप है। दीदी गीता जी ने आज हम कॉल बाबा ग्रुप का को बहुत बहुत अपने वचनों से कृतार्थ किया। हमें इतना हर्ष हो रहा है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। आपको शायद पता नहीं पर दीदी जी ने ब्रह्मा कुमारी में जाने कितनी शक्तियों को सच्चा रास्ता बताया है। आज का जो विषय दीदी जी ने लिया था वो था कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। उसमें दीदी जी ने बताया कि हमें अब हमें कहते हैं जागो जागो समय बीतता जाए, जागो जागो समय बीतता जाए। एक लाइन और है उसमें, हर आंगन देखो तो माया कैसा नाच नचाए। तो हमें उसी में पड़े रहना है या उससे निकल करके जीवन में आगे बढ़ना है। उसके लिए दीदी जी ने बताया कि हमें अब रियलाइज करना है कि मैं कौन, मेरा कौन, परमात्मा कौन। और उन्होंने बताया कि संस्कारों की प्रबलता के अनुसार हम अपने कर्म करते हैं, तो हमें अपने संस्कार ठीक करने हैं। उसका उन्होंने पूरा रास्ता बताया और हमने देखा कि हमारे कर्मों, विचार, वाणी और व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर, पशु पंछियों पर, अन्न पर, सभी पर पड़ता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे दीदी जी। और जो आपने हमें बताया है कि अब वक्त की पुकार है कि हमें पवित्र बनना है, योगी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। थैंक यू वेरी मच दीदी जी। हम इन वचनों को हमेशा याद रखेंगे। आइए एक जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी जी का धन्यवाद करें। थैंक यू। ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही।